एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे विचारक, एक ऐसे थिंकर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने नैतिकता, कानून, सरकार, इन सबको देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
हाँ,
एक ऐसा नाम जिन्हें अक्सर उपयोगितावाद का पिता या फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, जेरेमी बेंथम।
बिल्कुल। और देखिए, बेंथम कोई सिर्फ किताबों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट थे, एक समाज सुधारक थे।
अच्छा।
उनके अंदर एक जुनून था कि समाज और उसके जो तौर तरीके हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्हें तर्क और उपयोगिता, यूटिलिटी की कसौटी पर कसकर बिल्कुल बदल देना है। और मज़े की बात यह है कि आज, मतलब दो सदियां बीत गईं, पर उनके विचार आज भी हमारी पॉलिसीज़ में, लीगल डिबेट्स में, एथिकल बहसों में जिंदा हैं, बहुत रेलेवेंट हैं।
तो चलिए आज इसी सफ़र पर निकलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेंथम कौन थे, क्या थे उनके वो क्रांतिकारी विचार, खासकर ये उपयोगितावाद, या फिर है क्या।
हाँ बिल्कुल।
और क्यों आज भी बेंथम को पढ़ना समझना ज़रूरी है, कोशिश करते हैं ज़रा गहराई में उतरने की।
हाँ, तो शुरू करते हैं उस जमाने से, उस माहौल से जिसमें बेंथम जी रहे थे। उनका समय, मतलब 1748 से 1832, यूरोप के लिए बड़ी उथल पुथल वाला दौर था। एक तरफ तो वो ज्ञानोदय का युग था, है ना, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। हर चीज पर सवाल, तर्क, विज्ञान, रीजन, इन पर जोर था।
और दूसरी तरफ क्रांतियां भी तो हो रही थी, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति।
बिल्कुल।
पुरानी जो सत्ताएं थीं, राजशाही, चर्च, उन सब पर सवाल उठ रहे थे। और इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया था।
हाँ, वो समाज को बदल रहा था, तो माहौल कह सकते हैं बिल्कुल तैयार था नए विचारों के लिए। इसी माहौल ने बेंथम के विचारों को खाद पानी दिया। उन पर देखिए जॉन लॉक, डेविड ह्यूम जैसे एम्पिरिसिस्ट विचारकों का प्रभाव था,
जो अनुभव को मानते थे।
हाँ, कि ज्ञान अनुभव से आता है, किसी आसमानी किताब से नहीं। और इटली के एक थे सिसारे बेकारिया, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पर उन्होंने बहुत काम किया था।
अच्छा।
बेंथम उनसे बहुत प्रभावित थे, तर्कसंगत सजा होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए, ये सब विचार।
और वो जो मशहूर कहावत है, सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी, वो उन्हें कहीं और से मिली थी।
हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। जोसेफ प्रीस्टली का एक निबंध पढ़ रहे थे, उसमें ये फ्रेज मिला और बेंथम ने उसे लपक लिया।
अरे वाह।
हाँ, उसे अपने पूरे फिलॉसफी का, मतलब सेंट्रल आइडिया बना लिया। दिखाता है कि कैसे वो आइडियाज को लेकर अपना सिस्टम बनाते थे।
बेंथम के बचपन के बारे में भी कहते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, 3 साल में लैटिन सीख ली थी।
जी हाँ, बिल्कुल प्रोडिजी थे, विलक्षण। सिर्फ 12 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड भेज दिए गए, क्वींस कॉलेज।
12 साल में?
हाँ, फिर लिंकन इन से कानून की पढ़ाई की, बार में भी शामिल हुए, लेकिन वकालत उन्हें रास नहीं आई।
क्यों? मतलब उस समय की कानूनी व्यवस्था में क्या दिक्कत लगी उन्हें?
उन्हें वो पूरा सिस्टम जो है बेहद कॉम्प्लिकेटेड लगा, इलॉजिकल, पुरानी सड़ी गली परंपराओं पर टिका हुआ और साफ साफ, मतलब अमीरों का पक्ष लेने वाला। उन्हें लगा कि ये कानून आम आदमी की भलाई के लिए है ही नहीं, ये तो बस ताकतवर लोगों के इंटरेस्ट बचाने के लिए है।
अच्छा।
तो बस इसी डिसएन्चेंटमेंट से, इसी मोह भंग ने उनकी लाइफ का कोर्स बदल दिया। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी और तय किया कि अब पूरी जिंदगी, अपनी विरासत, सब कुछ वो लीगल, सोशल, पॉलिटिकल रिफॉर्म में लगाएंगे। और इन सब का बेसिस होगा एक सिंपल प्रिंसिपल, उपयोगिता का सिद्धांत।
तो चलिए अब आते हैं उनके सबसे बड़े आइडिया पर, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, या फिर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल।
हाँ,
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी, पर इसका मतलब क्या है और इसे लागू कैसे करें?
देखिए, यही उनके पूरे सिस्टम की नींव है, एकदम कोर आइडिया। मतलब सीधा सा है, कोई भी एक्शन, कोई भी लॉ, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, वो नैतिक रूप से सही तब है और सिर्फ तब जब वो उससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के लिए कुल मिलाकर ओवरऑल सुख को मैक्सिमाइज करे और दुख को मिनिमाइज करे।
सुख ज्यादा, दुख कम।
बिल्कुल। बेंथम का मानना था, और ये उनकी किताब की पहली लाइन भी है, कि कुदरत ने हमें 2 मास्टर्स के अंडर रखा है, सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर। हम जो कुछ भी करते हैं, इन्हीं से मोटिवेट होकर करते हैं। तो यही चीज सही और गलत का पैमाना भी होनी चाहिए। कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि नतीजा।
लेकिन ये सुख और दुख, इन्हें नापेंगे कैसे? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। आपकी खुशी मेरी खुशी से अलग हो सकती है।
हाँ, ये एक बड़ा सवाल था और बेंथम ने इसकी भी कोशिश की। उन्होंने एक मेथड प्रपोज किया जिसे कहते हैं फिलोसफिक कैलकुलस।
फिलोसफिक कैलकुलस?
हाँ, या हेडोनिक कैलकुलस। हेडोन मतलब सुख, तो ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मॉरल अरिथमेटिक था।
हिसाब किताब।
हाँ, किसी काम से जो सुख या दुख मिलेगा उसे 7 पैमानों पर नापने की कोशिश। वो कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है, कितनी देर चलेगा ड्यूरेशन, कितना पक्का है सर्टेंटी, कितनी जल्दी मिलेगा प्रोपिन्क्विटी।
और भी थे?
हाँ, क्या उससे और सुख पैदा होंगे फेकेंडिटी, क्या उसमें दुख तो नहीं मिला हुआ प्योरिटी, और सबसे जरूरी, कितने लोगों तक फैलेगा एक्सटेंट।
बाप रे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिसाब लग रहा है। क्या ये सच में प्रैक्टिकल था?
देखिए, प्रैक्टिकल तो नहीं था, इसे असल में लागू करना तो करीब करीब नामुमकिन है, और इसकी आलोचना भी बहुत हुई। लेकिन यहाँ बेंथम का इंटेंशन समझना जरूरी है, उनकी महत्वाकांक्षा। वो नैतिकता को, मोरैलिटी को, भावनाओं और रिवाजों के दलदल से निकालना चाहते थे, उसे तर्क और एक तरह से कहें तो कैलकुलेशन की सॉलिड जमीन पर खड़ा करना चाहते थे।
मतलब ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते थे।
उस वक्त के हिसाब से ये बहुत रेडिकल सोच थी। सही गलत का फैसला इस दुनिया के नतीजों, सुख और दुख पर आधारित हो, न कि किसी अनदेखी शक्ति या पुरानी किताब पर। यह उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नैतिकता को रैशनल बनाने की कोशिश।
और कानून? कानून के बारे में उनके क्या विचार थे? उन्होंने वो प्राकृतिक अधिकारों वाली बात क्यों खारिज कर दी? वो तो उस जमाने में बड़ी चीज मानी जाती थी।
हाँ, ये वाकई एक बोल्ड स्टेप था उनका। बेंथम जो है वो लीगल पॉजिटिविज्म के शुरुआती सपोर्टर्स में से थे।
लीगल पॉजिटिविज्म?
हाँ, मतलब कानून वो है जो सॉवरेन, यानी जो शासक है, सरकार है, वो आदेश देता है और जिसे लागू करवा सकता है। सिंपल, कानून का नैतिकता से कोई जरूरी कनेक्शन नहीं है।
अच्छा।
हाँ, हालांकि एक अच्छा कानून वो है जो उपयोगिता को बढ़ाए, ज्यादा सुख लाए, लेकिन कानून होने के लिए नैतिक होना जरूरी नहीं है। इसी लॉजिक से उन्होंने जॉन लॉक्स जैसे विचारकों के नेचुरल राइट्स, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, इन सबको सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने तो उसे स्टिल्ट्स पर बकवास कहा था, मतलब ऊंची एडी वाले जूतों पर खड़ी बेमतलब की बात।
बिल्कुल, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। उनका तर्क था कि अधिकार कहाँ से आए, हवा से? नहीं, अधिकार तो कानून बनाता है, सरकार बनाती है और उनकी रक्षा करती है। अगर कोई तथाकथित प्राकृतिक अधिकार समाज के लिए दुख पैदा कर रहा है या सुख को कम कर रहा है, तो उसे मानने का क्या फायदा? अधिकारों का वैल्यू उनकी यूटिलिटी से है, उनके नतीजों से है, किसी अमूर्त सिद्धांत से नहीं।
पूरी तरह से परिणाम आधारित सोच।
बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट।
ये सब सुनकर तो लगता है कि वो सुधारों के बहुत बड़े पैरोकार रहे होंगे। किस किस तरह के बदलाव चाहते थे?
अरे, वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स की बात की कि आज भी कई लोग हिचकिचाएं।
जैसे?
यूनिवर्सल सफरेज, यानी सबको वोट का अधिकार, और इसमें वो महिलाओं को शामिल करने पर भी विचार कर रहे थे। गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट, ताकि वोट पर कोई दबाव ना डाल सके। समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज करना। अगर उससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा तो वो अपराध क्यों हो? जानवरों के अधिकार।
जानवरों के अधिकार उस जमाने में?
हाँ, गुलामी खत्म करना, डेथ पेनल्टी खत्म करना, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। वो हर चीज को तर्क और उपयोगिता की कसौटी पर कस रहे थे।
और इन सब के पीछे लॉजिक वही था, क्या ये चीजें समाज का कुल सुख बढ़ाती हैं और दुख कम करती हैं?
बिल्कुल, फंडा क्लियर था। अगर कोई कानून, कोई परंपरा, कोई रिवाज समाज में दुख ज्यादा पैदा कर रहा है, सुख कम कर रहा है, तो उसे बदल डालो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी ही पवित्र क्यों ना माना जाता हो।
उनकी कौन सी किताबें हैं जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए?
देखिए, 2-3 तो बहुत जरूरी हैं। पहली है अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट।
अच्छा।
जो 1776 में आई।
अच्छा।
इसमें उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े लीगल अथॉरिटी थे सर विलियम ब्लैकस्टोन, उनकी धज्जियां उड़ा दी। कहा कि इनकी बातें तर्क पर नहीं, बस परंपरा पर आधारित है। यही उन्होंने अपना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल का इशारा दिया था। फिर आई उनकी सबसे फेमस, सबसे प्रभावशाली किताब, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, 1789 में।
ये तो क्लासिक मानी जाती है।
हाँ, ये क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म की फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक तरह से कह लीजिए बाइबल है उपयोगितावाद की। इसी में उन्होंने अपना पूरा नैतिक सिद्धांत, वो फिलोसफिक कैलकुलस वगैरह सब विस्तार से समझाया।
और एक वो पैनोप्टिकॉन का आइडिया था, वो जेल वाला।
हाँ, द पेनोप्टिकॉन. द पेनोप्टिकॉन ये 1791 के आसपास आया. ये बड़ा ही दिलचस्प और उतना ही कंट्रोवर्शियल आइडिया है.
क्या था ये?
ये बेसिकली एक आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन था, खासतौर पर जेलों के लिए बनाया था. लेकिन उनका मानना था कि ये स्कूलों, हस्पतालों, फैक्ट्रियों, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है.
कैसा डिज़ाइन?
एक गोल बिल्डिंग, सेल चारों तरफ, और बीच में एक ऊंचा टावर. उस टावर से एक अकेला गार्ड सारे कैदियों पर या स्टूडेंट्स पर या वर्कर्स पर नज़र रख सकता है.
अच्छा.
लेकिन कैदियों को ये नहीं पता चलता कि गार्ड उन्हें ठीक किस वक्त देख रहा है, तो उन्हें हमेशा लगता है कि उन पर नज़र रखी जा रही है. बेंथम को लगता था कि ये जो लगातार देखे जाने का एहसास है, यही लोगों को अनुशासन में रखेगा, और ये सज़ा देने या पिटाई करने से बेहतर, ज़्यादा मानवीय और सस्ता तरीका होगा सुधार का.
लेकिन ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लगता है, मतलब लगातार निगरानी का एहसास.
बिल्कुल, और यही इसका दूसरा स्याह पहलू सामने आता है. बेंथम का इरादा शायद सुधार का था, कंट्रोल का एक रैशनल तरीका खोजने का था. लेकिन बाद में, खासकर 20वीं सदी के फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको ने
इस पर लिखा है.
हाँ, फूको ने पेनोप्टिकॉन को एनालाइज किया और कहा कि ये सिर्फ एक जेल का डिज़ाइन नहीं है, ये मॉडर्न सोसाइटी में जो पावर ऑपरेट करती है, अदृश्य फैली हुई निगरानी, सर्वेलेंस, अनुशासन थोपने वाली शक्ति, उसका परफेक्ट सिंबल है. और आज देखिए, डिजिटल युग में जहाँ CCTV कैमरे हर जगह हैं, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी लगातार ट्रैक हो रही है, पेनोप्टिकॉन का आइडिया और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है.
सही बात है. ये दिखाता है कि कैसे एक विचार जिसका इरादा शायद अच्छा हो, उसके अनएक्सपेक्टेड परिणाम हो सकते हैं.
बिल्कुल.
तो बेंथम के विचार बाकी विचारकों से, जैसे इमैनुअल कांट से, कैसे अलग थे? अक्सर इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है कॉन्ट्रास्ट में.
हाँ, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में. देखिए, बेंथम का सिद्धांत क्या है? परिणामवाद है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. कोई काम नैतिक है या अनैतिक, ये उसके नतीजे पर डिपेंड करता है. क्या उससे सुख बढ़ा, दुख कम हुआ?
नतीजा ही सब कुछ है.
हाँ, जबकि कांट की नैतिकता कर्तव्य आधारित थी, डियोन्टोलॉजी. वो मानते थे कि कुछ कर्म अपने आप में ही सही या गलत होते हैं, उनके नतीजे चाहे जो भी हो.
जैसे
झूठ बोलना. कांट के लिए झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे उससे किसी की जान ही क्यों ना बच रही हो, क्योंकि अगर सब झूठ बोलने लगे तो समाज चल ही नहीं सकता. उनके लिए नियत और यूनिवर्सल लॉ महत्वपूर्ण थे.
और बेंथम के लिए?
बेंथम के लिए सिर्फ और सिर्फ परिणाम. अगर झूठ बोलने से ज्यादा सुख पैदा होता है, दुख कम होता है, तो वो नैतिक रूप से सही हो सकता है. ये बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है.
तो बेंथम की विरासत क्या रही, मतलब उनके जाने के बाद उनके विचारों का क्या हुआ, कितना असर पड़ा?
क्या जो उनके विचारों से प्रेरित था.
अच्छा, कौन लोग थे इसमें?
इसमें जेम्स मिल थे और उनके ज्यादा मशहूर बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल. ये लोग बड़े प्रभावशाली सुधारक थे. इन्होंने 19वीं सदी में ब्रिटेन में कई बड़े कानूनी और राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाया, जैसे 1832 का रिफॉर्म एक्ट, जिसने वोटिंग अधिकारों का दायरा बढ़ाया.
और जेम्स मिल ने तो उपयोगितावाद को आगे भी बढ़ाया.
हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद को और रिफाइन किया. उन्होंने बेंथम की आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश की, जैसे उन्होंने ऊंचे और नीचे दर्जे के सुखों में फर्क किया. कहा कि दिमागी और नैतिक सुख शारीरिक सुखों से बेहतर होते हैं. उन्होंने उपयोगितावाद को लिबरलिज्म के साथ जोड़ा और उसे पश्चिमी दुनिया की सबसे प्रमुख नैतिक थ्योरीज में से एक बना दिया.
और आज के समय में बेंथम कहाँ दिखते हैं? क्या आज भी उनकी बातें प्रासंगिक हैं?
अरे बिल्कुल है. आज भी उनकी छाप कई जगहों पर साफ दिखती है. जैसे सरकारें या बड़ी कंपनियां जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, कोई पॉलिसी बनाती हैं, तो वो अक्सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती हैं, ना?
हाँ, लागत लाभ विश्लेषण.
कितना खर्च आएगा, कितना फायदा होगा.
बिल्कुल.
ये जो तरीका है, ये सीधे सीधे बेंथम के फिलोसोफिक कैलकुलस वाले आइडिया से निकला है. आप नतीजों को तौल रहे हैं, सुख लाभ और दुख लागत.
अच्छा.
और पशु अधिकारों का जो आंदोलन है, एनिमल राइट्स मूवमेंट,
हाँ,
उसकी नींव में बेंथम के विचार है. उनका वो सवाल याद है?
हाँ, वो कि क्या वो तर्क कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ये सवाल नहीं है,
बल्कि सवाल ये है कि क्या वे पीड़ित हो सकते हैं. कैन दे सफर. ये सोच कि दुख महसूस करने की क्षमता ही किसी प्राणी को हमारे नैतिक दायरे में लाने के लिए काफी है, ये आज भी एनिमल वेलफेयर और एनिमल राइट्स की बहस का केंद्र है.
और पेनोप्टिकॉन वाला आइडिया तो आपने बताया ही कि डिजिटल सर्वेलेंस के जमाने में कितना रेलेवेंट हो गया है.
हाँ, वो तो है ही. बायोएथिक्स में, एनवायरमेंटल पॉलिसी में, इकोनॉमिक जस्टिस की बहसों में, हर जगह आपको उपयोगितावादी तर्क मिल जाएंगे। ये देखना कि किस पॉलिसी से सबसे ज्यादा लोगों का भला होगा। तो बेंथम के सवाल आज भी बहुत जिंदा है।
जाहिर है, इतने प्रभावशाली विचारों की आलोचना भी जरूर हुई होगी। क्या मुख्य क्रिटिसिज्म है उपयोगितावाद के?
हाँ, आलोचनाएं भी काफी गंभीर हैं और शुरुआत से ही होती रही हैं। एक सबसे बड़ी चिंता जो उठाई जाती है वो है मेजॉरिटी टिरनी की, बहुमत की तानाशाही।
उसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि अगर ज्यादातर लोगों की थोड़ी सी खुशी के लिए किसी छोटे ग्रुप, किसी माइनॉरिटी के अधिकारों का या उनकी बहुत बड़ी खुशी का बलिदान करना पड़े, तो क्या उपयोगितावाद इसे सही ठहरा देगा?
ये तो खतरनाक लग रहा है।
हाँ, ये हमारे जो न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के बोध है उनसे टकराता है। क्या हम किसी एक निर्दोष को सजा देकर बाकी समाज को खुश कर सकते हैं? उपयोगितावाद शायद हाँ कह दे, पर हमारा मन नहीं मानता।
और एक ये भी आलोचना होती है कि क्या हर चीज को सुख दुख में तोला जा सकता है, जैसे प्यार, दोस्ती, सम्मान, ज्ञान, इनका क्या मोल लगाएंगे?
बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी आलोचना है जिसे रिडक्शनिज्म कहते हैं।
रिडक्शनिज्म?
हाँ, यानी हर मानवीय मूल्य को, हर प्रेरणा को घटाकर सिर्फ सुख और दुख की कैलकुलेशन तक ले आना। आलोचक कहते हैं कि ये जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी को, न्याय, अधिकार, वफादारी, सुंदरता जैसे जो उच्च मानवीय मूल्य हैं, उनको नजरअंदाज कर देता है।
हालांकि जेएस मिल ने इसे सुधारने की कोशिश की थी, वो ऊंचे नीचे सुख वाली बात करके।
हाँ, उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कौन तय करेगा कि कौन सा सुख ऊंचा है, कौन सा नीचा। फिर वो कैलकुलेशन वाली बात तो खत्म हो जाती है।
और पैनोप्टिकॉन की भी आलोचना होती है।
हाँ, जाहिर है, जहाँ बेंथम उसे एक मानवीय और कुशल तरीका मान रहे थे सुधार का, वहीं आलोचक उसे दमनकारी, निगरानी, सोशल कंट्रोल का एक भयावह प्रतीक मानते हैं। आज की सर्विलेंस सोसाइटी की चिंताओं की जड़ें कहीं ना कहीं पैनोप्टिकॉन में दिखती हैं।
और वो सुख दुख नापने वाली दिक्कत तो है ही।
हाँ, मेजरमेंट प्रॉब्लम, कैसे नापें और लोगों के सुख दुख की तुलना कैसे करें। और एक और आलोचना है, डिमांडिंगनेस ऑब्जेक्शन।
वो क्या है?
वो ये कि अगर हमें हमेशा वही करना है जिससे दुनिया में कुल सुख अधिकतम हो, तो क्या हमें अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी चाहिए, अपना सारा समय दूसरों की मदद में लगा देना चाहिए? क्या ये सिद्धांत हमसे कुछ ज्यादा ही मांग नहीं कर रहा? क्या ये प्रैक्टिकल है?
ये तो सच में बड़े गहरे सवाल हैं। अच्छा, बेंथम के बारे में कुछ मजेदार बातें भी हैं, है ना? वो ऑटो आइकन वाली कहानी क्या है?
हाँ, वो बेंथम की विलक्षण शख्सियत का एक बड़ा ही अजीब और अनोखा पहलू है।
बताइए ना।
अपनी वसीयत में बेंथम ने निर्देश दिया कि मरने के बाद उनके शरीर को पहले तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए डिसेक्ट किया जाए,
चीरफाड़ की जाए।
अच्छा, और उसके बाद उनके कंकाल को कपड़े पहनाकर, गद्दी वगैरह लगाकर, मतलब उसे प्रिजर्व किया जाए और एक शीशे के कैबिनेट में कुर्सी पर बैठाकर डिस्प्ले पर रखा जाए। इसी को उन्होंने नाम दिया ऑटो आइकॉन, यानी स्व प्रतिमा।
अरे बाप रे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या मकसद था?
कहना मुश्किल है। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि इंसान अपने विचारों और कामों से अमर होता है, शरीर से नहीं। या शायद ये भी उनकी उपयोगितावादी सोच ही थी कि मरने के बाद भी मेरा शरीर किसी काम आए, लोग उसे देखकर कुछ सोचें, प्रेरित हों।
और ये ऑटो आइकॉन आज भी है?
हाँ, ये आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, UCL में मौजूद है, जिसे बेंथम ने स्थापित करने में मदद की थी। और मजाक में ये कहा जाता है कि कभी कभी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग्स में उसे लाया जाता है और मिनट्स में लिखा जाता है, प्रेजेंट बट नॉट वोटिंग।
कमाल है, ये तो सच में बड़े ही विलक्षण व्यक्ति थे।
बिल्कुल, और काफी सनकी भी कह सकते हैं। अपनी चलने वाली छड़ियों के नाम रखे हुए थे उन्होंने। एक प्यारी बिल्ली थी जिसका नाम रखा था रेवरेंड डॉक्टर जॉन लैंगबोन।
क्या बात है।
और हाँ, उन्होंने कई नए शब्द भी घड़े या लोकप्रिय किए, जैसे इंटरनेशनल, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कोडिफाई, यहाँ तक कि यूटिलिटेरियन शब्द भी।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा योगदान है भाषा के लिए भी।
हाँ, वो शब्दों के साथ भी खेलते थे।
तो अगर हम बेंथम की पूरी कहानी, उनके विचारों को समेटना चाहें, तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है, हम क्या सीख सकते हैं उनसे?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि बेंथम ने नैतिकता और राजनीति को तर्क की और उससे भी बढ़कर वास्तविक दुनिया के परिणामों की जमीन पर लाने की एक जबरदस्त रेडिकल कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें परंपरा, धर्म या बड़े बड़े अमूर्त सिद्धांतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कानूनों का, हमारी नीतियों का, हमारे कामों का इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या वो सच में सुख बढ़ा रहे हैं और दुख कम कर रहे हैं।
उन्होंने हमें एक तरह से चुनौती दी कि हम अपनी संस्थाओं पर, अपनी मान्यताओं पर लगातार सवाल उठाएं, उन्हें सिर्फ इसलिए ना मान लें क्योंकि वो पुरानी हैं, बल्कि देखें कि क्या वो वाकई लोगों की भलाई कर रही हैं।
बिल्कुल, नतीजों को देखो, एविडेंस को देखो और फिर फैसला करो, तर्क संगत बनो। उनका जोर रैशनल रिफॉर्म पर था।
हाँ, ये बात तो है कि उनके तरीके, जैसे वो फिलोसॉफिक कैलकुलस, शायद आज हमें थोड़े मैकेनिकल लगें, या उनकी थ्योरी की आलोचनाएं भी अपनी जगह सही हों।
हाँ, वो हैं।
लेकिन उनका जो मूल संदेश है कि नैतिकता और राजनीति का जो सेंट्रल फोकस होना चाहिए वो दुख को कम करना और भलाई को बढ़ाना होना चाहिए, ये विचार तो आज की बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि दुनिया और उलझ गई है।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। बेंथम हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को, अपने समाज के नियमों को और यहाँ तक कि अपने निजी नैतिक विकल्पों को भी उनके वास्तविक दुनिया के परिणामों के आधार पर तोलें। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां भावनाएं, विचारधाराएं, पहचान की राजनीति, ये सब अक्सर हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं, बेंथम का ये ठंडा, तर्कसंगत, नतीजा केंद्रित नजरिया कितना उपयोगी है या शायद कितना खतरनाक भी हो सकता है। क्या सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी हमेशा सही रास्ता दिखा सकती है, खासकर तब जब बात अल्पसंख्यकों के अधिकारों या न्याय जैसे अमूर्त लेकिन जरूरी मूल्यों की हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको लगातार सोचते रहना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।